اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام و محمد و آل محمد پر. ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید ہے کہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے شام کا بحران اور جنیوا 2 مذاکرات کی ناکامی. اس موضوع پر گفتگو ہوگی معزز مہمانوں سے، مگر مختصر سے وقفے کے بعد. ناظرین، یقیناً آپ نے سنا ہوگا جنیوا 2 مذاکرات، جس کا شورا ہفتوں اور مہینوں سے تھا، گزشتہ 22 جنوری کو شروع ہوئے اور کل یعنی 30 جنوری کو اختتام پذیر ہوئے. انجام وہی ہوا جس کے بارے میں اسلامی جمہوری ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے ڈیووس اجلاس جانے سے قبل یعنی مذاکرات سے ایک دن پہلے کہا تھا کہ جنیوا مذاکرات ناکام ہوں گے. کیوں ناکامی ہاتھ لگی اور کیسے ناکام ہوئے مذاکرات، اور ان مذاکرات کی ناکامی کے ذمہ دار کون سی قوتیں، کون سے عناصر اور کون سے لوگ ہیں، اور اب آئندہ کی صورتحال کیا ہوگی، امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے پاس اب کون سے پتے ہیں، یہ وہ سارے سوالات ہیں جن کا ہم جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اپنے آج کے اس پروگرام میں. مگر آئیے یہاں پر ایک رپورٹ دیکھتے ہیں جسے ہمارے ساتھیوں نے تیار کی. جنازین، اور اب چلتے ہیں سیدھے دہلی اسٹوڈیو جہاں پر موجود ہیں ممتاز دانشور ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب. السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
جی ڈاکٹر صاحب، جنیوا 2 اجلاس یا مذاکرات جو 9 دنوں تک جاری رہے ناکام ہو گئے، کیوں؟ اس پر کچھ آپ تفصیل سے روشنی ڈالیں گے؟
دیکھیے، بنیادی چیز یہ ہے کہ کسی بھی قدم کو اٹھانے سے پہلے اس میں نیت اور نظریے کا درست ہونا بہت ضروری ہے. جنیوا 2 سے پہلے بھی اس بات کی قیاس آرائیاں بہت تیز تھیں کہ اس سلسلے میں نہ امریکہ کی نیت درست تھی اور نہ ہی ہمارے بعض حکمرانوں کی نیت درست تھی، اس لیے کہ جو لوگ شام کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے پہلے تو وہ ان کی شرکت نہیں چاہتے تھے، لیکن بعد میں وہ اس چیز پر راضی ہوئے کہ جو شام کے الائز ہیں ایران جیسے ممالک، ان کو اس میں شریک کیا جائے. لیکن جب تک شام کی سرزمین پر مکمل باغیوں کی سرپرستی بند نہیں ہوگی، ان کی اسلحے کی فراہمی جاری رہے گی، اور ایک بار وہاں کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ پہلے اگر ہم کسی سسٹم کو درست کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ایز اٹ از اس حکومت کو تسلیم کیا جائے، اور پھر اس حکومت کے سامنے جو عوامی شرائط ہیں وہ رکھے جائیں، پھر اسی حکومت کی قیادت میں آزادانہ الیکشن ہونے چاہئیں، جس کے لیے ایک بار پیش رفت خود بشار الاسد کی جانب سے بھی یہ نظریہ آیا تھا کہ وہ آزادانہ الیکشن کرائیں گے اگر ٹیررسٹ گروپ کی حمایت سعودی عرب یا امریکہ جیسے ممالک بند کر دیں. لیکن اس سلسلے میں جو باغی گروپ ہیں وہ چونکہ ویسٹرن فورسز اور یو ایس کی مدد سے کسی بھی صورت سے اپنی ایک حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں اور بشار الاسد کی حکومت کو نیست و نابود کرنا چاہتے ہیں، جس طرح اس سے پہلے ایجپٹ کی سرزمین میں یا عراق کی سرزمین میں دوسری جگہ کیا گیا، اسی لیے ان کو ناکام ہونے کے جو نظریات پہلے سے آ رہے تھے کہ یہ ناکام ہو سکتے ہیں، تو آلریڈی یہ تقریباً ڈیسائیڈڈ تھا کہ جب تک ہم ایک دوسرے فریق کو تسلیم نہیں کریں گے اور آزادانہ طور سے اسے کھلے ذہن سے ایکسیپٹ نہیں کریں گے، اس وقت تک ان کی کامیابی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا.
جی بہت شکریہ، میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں. چلتے ہیں اس وقت کراچی جہاں ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے سینئر تجزیہ نگار مقتدیٰ منصور صاحب سے. السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام.
جی مقتدیٰ منصور صاحب، ابھی ہمارے دہلی میں مہمان فرما رہے تھے کہ یہ جنیوا 2 کانفرنس کیوں ناکام ہوئی، آپ کا کیا خیال ہے؟
دیکھیے، بنیادی بات جو ڈاکٹر صاحب نے کہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل درست بات کی ہے انہوں نے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب تک کہ آپ کسی ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت بند نہیں کریں گے اور مسلح گروہوں کو، مسلح دھڑوں کو اسلحے کی سپلائی اور ان کی دیگر مالی اور دیگر اس قسم کی امداد بند نہیں کریں گے، معاملات توازن کی طرف نہیں جائیں گے، بہتری کی طرف نہیں جائیں گے. بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ وہاں پر حکومت کو چاہیے کہ وہ آزادانہ انتخابات کرائے، تو اس کے لیے مسلح دھڑوں کو سب سے پہلے تو غیر مسلح کرنا پڑے گا یا انہیں ہتھیار رکھنا پڑیں گے، اور اس کے علاوہ جو بیرونی ممالک اور خاص طور پر سعودی عرب اور خلیج کے دیگر ممالک امریکہ کے ایما پر وہاں پر امداد فراہم کر رہے ہیں ان دھڑوں کو، انہیں اپنی امداد بند کرنا پڑے گی، کیونکہ اس کے بغیر وہاں پر ایک صورتحال نارمل کی طرف نہیں جائے گی، اور نارمل صورتحال جب نہیں ہوگی تو انتخابات بھی آزادانہ اور شفاف نہیں ہو سکتے. لہذا شفاف اور آزادانہ انتخابات کے لیے یہ اقدامات ضروری ہیں. لیکن لگتا ہے کہ امریکہ نے غالباً افغانستان کی صورتحال سے کوئی سبق نہیں سیکھا، اور وہ وہی کوئی دوہرا رہا ہے جس کا ابھی حال ہی میں جو امریکہ میں ایک سینٹ کی انٹیلیجنس کمیٹی نے جو رپورٹ دی ہے، اور اس کے مطابق کہ 26,000 سے زائد جو ملیٹنٹس وہاں پر ہیں اور ان میں القاعدہ کی موجودگی بھی ثابت ہو رہی ہے. لہذا اس صورت حال کے اندر انہوں نے پھر یہ بات کہی ہے اور واضح کیا ہے امریکن حکومت پر کہ اگر انہوں نے یہ اسلحے کی سپلائی بند نہیں کی تو وہی صورت حال پیدا ہو جائے گی جو القاعدہ کی پاکستان کے قبائلی علاقوں میں ہے شام کے اندر. لہذا شام کی صورت حال کو بہتر بنانے اور شام کی صورت حال کے اندر توازن لانے اور وہاں پر کسی قسم کی مداخلت سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پر ان دھڑوں کی بند کی جائے. اور یہی وجہ تھی کہ وہاں پر اختلافات پیدا ہوئے اور یہ جو کانفرنس تھی جنیوا 2 وہ ناکام ہوئی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر جو پیش رفت ہوئی ہے روسی حکومت اور امریکہ کے درمیان کہ وہاں پر ایک متوازن حکومت لائی جائے وہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے، لیکن امریکہ غالباً اس معاملے میں سنجیدہ نظر نہیں آ رہا.
جی بہت شکریہ. میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں. چلتے ہیں لندن اسٹوڈیو جہاں پر موجود ہیں عالمی امور کے ماہر اور سینئر تجزیہ نگار جناب علی جعفر زیدی صاحب. السلام علیکم جناب.
جی وعلیکم السلام.
علی جعفر زیدی صاحب ابھی جو تصویر میں دیکھ رہا تھا بیک گراؤنڈ میں وہ بان کی مون اور ولید المعلم کی جو نوک جھونک ہو رہی تھی، مجھے وہ منظر یاد آ گیا جب ولید المعلم شام میں عالمی دہشت گردوں کے جرائم کا پردہ چاک کر رہے تھے اور ان کے حامیوں کے چہروں پر پڑی نقاب اتار رہے، تو اس وقت بان کی مون نے ان کو ٹوکا کہ آپ کا وقت ختم ہو گیا، جس پر انہوں نے جواب دیا آپ سب جانتے ہیں کہ مسٹر بان کی مون آپ نیو یارک میں رہتے ہیں اور میں شام میں رہتا ہوں اور مجھے شام کے حالات بیان کرنے دیجئے. تو بہت سے مبصرین کا کہنا ہے کہ کچھ فائدہ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، شامی حکومت کو کم سے کم اس کانفرنس سے یہ فائدہ ہوا کہ اس کا جو تشہیراتی بلیک آؤٹ کیا گیا تھا، بائیک آؤٹ کیا گیا تھا، اس نے اس فورم پر آ کر دہشت گردوں اور دہشت گردوں کے حامیوں کے چہروں پر پڑی نقاب کو اتار دیا. آپ کیا کہیں گے؟
یقیناً یہ بہت جرأت مندانہ ان کا انداز رہا ہے، اور یہ جو دہشت گرد ہیں اور ان کے جو پشت پناہی کرنے والے طاقتیں ہیں ان کے چہروں سے نقاب اتارنا بے حد ضروری ہے، اس لیے کہ جو معصوم انسان ہیں دنیا میں بسنے والے ان کو یہ میڈیا کے تھرو بیوقوف بنایا جاتا ہے، اور واقعی یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ جو مغرب ہے وہ وہاں جو ریبلز ہیں یعنی باغی ہیں ان کی مدد کر رہا ہے، وہ یہ نہیں کہتے کہ دہشت گردوں کی مدد کی جا رہی ہے. ہیلو.
جی 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 عنایت. جی زیدی صاحب آواز آ رہی ہے آپ کی، فرمائیے.
جی آ رہی ہے. اچھا جی جی. تو یہ بہت انہوں نے جو نوک جھونک پہلے بھی ہوئی تھی، اور اس کو نوک جھونک نہیں بلکہ انہوں نے اپنی جو حکومت کا موقف ہے بڑے مردانہ وار انداز میں دنیا کے سامنے پیش کیا.
جی.
اور یہ جو یونائٹڈ نیشن ہے یہ تو دنیا کو معلوم ہے، اور اب تک یہ پول کھل چکا کہ یہ سب سرویئنٹ ہے امریکی سامراج اور اس کے اتحادیوں کی، بالکل اسی طرح جیسے نیٹو کی افواج جو ہیں وہ بھی انہیں کے تابع ہیں، اور ورلڈ بینک یا آئی ایم ایف اور یہ سب ادارے اس وقت جو ہیں وہ یہ جو یونیپولر ورلڈ کا انچارج پورے گلوب کا امریکی سامراج بنا ہوا ہے اور اس کے جو حواری ہیں ان کے ماتحت ہیں یہ سب ادارے، اور ان کو جو قومیں اس وقت چیلنج کر رہی ہیں اور جو ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر अपनी इज्जत नफ्स के साथ जिंदा रहना चाहती हैं उनमें से एक शाम है, और बाकी तो सबको मालूम है चंद और ममालिक हैं, ईरान है, शुमाली कोरिया है, क्यूबा है, वेंजुएला है। तो अभी चंद ममालिक ऐसे हैं जो कि इस दुनिया में अपनी इज्जत नफ्स और इज्जत के साथ सर उठाकर जिंदा रहना चाहती हैं। तो ये बहुत ही एक्सपोज उन्होंने किया और दुनिया के आम लोगों तक ये बात पहुंची कि जालिम कौन है और मज़लूम कौन है,
जी
और जालिम का साथ देने वाले ये यूनाइटेड नेशन के अदारे हों, उनके मातहत जो और अदारे हैं वो हों, या ओबामा की हुकूमत हो या पेंटागन हो, इनको एक्सपोज करना बेहद ज़रूरी था, बेहद ज़रूरी है और बेहद ज़रूरी रहेगा।
जी बहुत शुक्रिया आपका। मैं फिर हाजिर हूँगा आपकी खिदमत में। डॉक्टर हाफिज़ रहमान साहब, जब 22 जनवरी को ये कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, जिसके लिए बड़ा इंतज़ाम किया गया, जिसके लिए बड़ी तगोदो की गई, तो जब ये कॉन्फ्रेंस शुरू हुई तो पहले दिन बजाय कि शाम के मामले को उठाया जाता या शाम के मामले पर बहरान पर बहस होती, देखा यह गया कि ईरान की अदम शिरकत का मामला ज़्यादा हावी रहा। तो आप क्या समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ?
देखिए, उसकी तो वजह बहुत सीधी सीधी है कि अमेरिका जो है वो उन तमाम ताकतों के साथ बैक वक्त नबर्दाज़मा होना चाहता है जो उसके साथ नहीं हैं, जो उसके हामी नहीं हैं, या जो अपने वजूद की बुनियाद पे इस दुनिया में अपनी एक पहचान रखते हैं। जैसा अभी हमारे दूसरे फाजिल दोस्त लंदन स्टूडियो से बोल रहे थे, तो कहीं ना कहीं उन सारे ममालिक पर अमेरिका की गहरी नज़र रहती है कि जो उसकी गुलामी में या उसके सामने सरनिकू नहीं है। तो कोई भी साम्राज्य की अपनी एक तारीख है, साम्राज्यवाद या साम्राज्यत बहुत ज़्यादा ज़माने तक सस्टेन नहीं कर पाती है, और धीरे धीरे आपने ये देखा होगा कि पिछले 10 सालों में, 5 साल पहले जो जिस तरीके से अमेरिका एक दूसरे पर अटैक करता था, उसके बाद धीरे धीरे अमेरिका की ताकत और अमेरिका का जो गुरूर है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, उनकी ताकत खिसकती चली जा रही है, क्योंकि वो जिन लोगों का इस्तेमाल करते हैं वही लोग या तो उनके एक रोज़ मुखालिफ हो जाते हैं, या जिन लोगों को वो एक वक्त में मुजाहिदीन कहकर पुकारते हैं वो लोग उनकी नज़र में टेररिस्ट हो जाते हैं, और वही टेररिस्ट उनके मकसद के लिए मुजाहिद हो जाते हैं। ऐसा ही सेम अफगानिस्तान की सरजमीन पे और सीरिया की सरजमीन को, दोनों को अगर हम लिंक करके देखें तो सीरिया की सरजमीन पे लड़ने वाले वही अलकायदा ग्रुप के लोग जो सऊदी और कतर दोनों के हिमायत याफ्ता हैं, मीडिएटर हैं वो उनके, और अमेरिका उनकी पुश्त पनाही कर रहा है, वो वही लोग हैं जिन पर अटैक अफगानिस्तान की सरजमीन में अमेरिका पहले कर चुका है और उससे बाहर नहीं आ रहा है। तो दरअसल चाहे वो लेबनान हो, चाहे सीरिया हो, चाहे फलस्तीन हो, इन ममालिक पर किसी पर भी अमेरिका अटैक करे, अमेरिका का वाहिद मकसद है उन सारे ममालिक के साथ टकराना जिनसे उसको किसी भी एतबार से ख़तरा महसूस होता है, या उसकी नाजायज़ औलाद इसराइल के लिए जो ममालिक ख़तरा बने हुए हैं। तो अमेरिका एक उस जंग की तैयारी कर रहा है कि आप ये देखिए कि एक ज़माने तक जिस अमेरिका और वेस्टर्न फोर्सेज ने वहाबी इज़म को प्रमोट किया हो और पूरे एशिया के अंदर वहाबी इज़म के ज़रिए, अलकायदा के ज़रिए, तालिबान के ज़रिए उन्होंने दो काम किए, एक तो पूरे देश, पूरे इस खित्ते के अमन को गारत किया, सुकून को गारत किया, चाहे वो पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, उसके बाद मिडिल ईस्ट में देख लीजिए तो इराक हो, शाम हो, लबनान हो, पैलेस्टीन हो, इजिप्ट हो या इराक हो। अब वो कोशिश अपनी जो ईरान तक पहुंचने में वो नाकाम नज़र आ रहा है, तो चाहे वो मुजाकिरात के ज़रिए से ईरान को निशाना बनाए, चाहे वो किसी भी सीरिया के ज़रिए से बनाए या उसके पड़ोसी ममालिक इसराइल के ज़रिए से बनाए, वो कहीं ना कहीं ईरान आँखों में खटकता है हमेशा अमेरिका की। तो जाहिर सी बात है कि ईरान एक मजबूत एलाई मुल्क है सीरिया का, तो उसका जिक्र वहाँ की कॉन्फ्रेंस में होना एक नागुजीर बात थी।
जी मैं फिर हाजिर हूँगा। मुक्तदा मंसूर साहब, 24 घंटे के अंदर ईरान को दावतनामा दिया भी अक्वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी जनरल ने और वापस भी ले लिया, और ये ऐसी हालत में था कि दावतनामा देने से पहले और दावतनामा देने के बाद बार बार बान की मून और दीगर इदारों के अहदेदारों और मुल्कों के सरबराहों ने यह बात बबांगे दोहल कही कि ईरान का रोल बहुत ही अहम है, और जो दावत दे रहा है वो बार बार ये कह रहा है कि ईरान की इस इजलास में शिरकत बहुत ही ज़रूरी है। दावत देने के बाद फिर दावतनामा वापस ले लेने का क्या मतलब बनता है? क्या उन्हें नहीं पता था कि ईरान का रोल क्या है, और अगर ईरान को शिरकत की दावत न दी गई तो इजलास का नतीजा क्या निकलेगा?
शुक्रिया। देखिए मसला फिर वही मैं आपसे अर्ज करूंगा कि असल में वो इस खत्ते को रिस्ट्रक्चर करना चाहते हैं, और ये आपको याद होगा कि जब सर जंग खत्म हो रही थी तो बुश अव्वल उस वक्त सदर थे अमेरिका के, और उन्होंने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर दिया था, और जिसके अंदर पूरा मिडल ईस्ट को रिस्ट्रक्चर करना था, और जिसका आगाज उन्होंने मिस्र और लीबिया और दीगर ममालिक से किया, ट्यूनिस से किया था। लेकिन आप ये देखिए कि वो तमाम खेल, और उसके अंदर बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया कि एक नई तब्दीली आ रही है, एक तब्दीली की नई लहर आ रही है, लेकिन लीबिया को उन्होंने कहाँ पहुँचा कर खड़ा किया है, लीबिया को किस तरह से तबाह किया है, उसके बाद उन्होंने देखिए कि वहाँ जो सूरत हाल पैदा हुई। लेकिन एक बात आप बना देखिए, मैं इससे पहले आपके सवाल की तरफ आऊँ,
जी अली जाफर जैदी साहब, मुजाकरात अभी जारी ही थे जनेवा में हुकूमती वफद, शाम के हुकूमती वफद और मुखालिफिन के दरमियान, कि अमरीकी कांग्रेस ने बिल पास कर दिया और ये कहा कि हम शाम में लड़ने वालों को असलहों या हथियारों की सप्लाई दोबारा बहाल कर रहे हैं। तो आप इससे क्या नतीजा निकालते हैं कि अमरीका मुजाकरात से क्या हासिल करना चाहता था, और अब मुजाकरात के दौरान ही ये इकदाम करके क्या हासिल करना चाह रहा है?
जी, वो ये प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पे किया गया है, और उसका हदफ़ ये था और है कि शाम में इंटरिम गवर्नमेंट कायम की जाए, और इसी बुनियाद पर जो ईरान का दावतनामा है वो मंसूख किया गया, क्योंकि ईरान इस बात पर बिल्कुल रजामंद नहीं था कि जो सीरिया में एक अबूरी हुकूमत कायम की जाए, और ये चाहते थे कि ईरान पहले से इस बात पर एग्री कर जाए कि वो इस पॉइंट की हिमायत करेगा। तो ये जो अबूरी हुकूमत का मामला है, इसकी तरफ सारा जोर है, और कोशिश ये की जा रही है वहाँ जिहादियों के ज़रिए, दहशतगर्दों के ज़रिए, मुज़ाकरात के ज़रिए, कि किसी तरह से शाम में बशर अल असद की हुकूमत ख़त्म की जाए। और चूंकि बशर अल असद की हुकूमत एक ढाल है इस वक्त ईरान, यानी बशर अल असद की हुकूमत के ख़ात्मे का मतलब है लबनान में हिज़्बुल्लाह और फिर ईरान और उधर हमास, तो ये शाम के ज़रिए इस तरफ जाना चाहते हैं, और वो अबूरी हुकूमत एक ऐसा मुतालबा है जो कि अबूरी हुकूमत वहाँ के अवाम को ये मुतालबा करना चाहिए, ना कि बाहर के इन जो जाहरे अकवाम हैं उनकी तरफ से मुतालबा हो। और ईरान ने बहुत वाज स्टैंड लिया, उन्होंने जो रिसेंटली बात की वो बहुत यानी हर दिशूर को ये अपील करती है कि अगर ये होना है तो फिर सीरिया में इंतखाबात करवाए जाएं, और सीरिया के अवाम वो तय करें कि उन्हें कौन सी हुकूमत चाहिए, और दुनिया फिर उस हुकूमत को कबूल करे। तो ये तो एक सीधा एक कॉमन सेंस हर आदमी की समझ में आने वाली बात है, लेकिन ये बात कि अबूरी हुकूमत कायम की जाए, और वो भी वो हुकूमत कायम की जाए जो कि अमेरिका, सऊदी अरब और कतर और उस तरह के जो बगल बच्चे हैं अमेरिका के, उनकी मदद से वो अबूरी हुकूमत कायम हो, तो ये तो नामुमकिन बात है। और इसी वजह से जो शाम की हुकूमत का वहाँ पर जो स्टैंड था वो बहुत वाज़े था कि आप टेररिस्टों की बात पहले कीजिए और बुरी हुकूमत की बात तो बाद में आती है, आप ये टेररिस्ट जो हैं जिनकी आप इमदाद कर रहे हैं, और इस मौके पर जबकि ये मुज़ाकरात जारी थे, और ट्यूसडे को जो उन्होंने फिर तातुल और सीरिया की हुकूमत ने इस दबाव को कबूल करने से इनकार किया, वो बिल्कुल ठीक था कि एक ऐसे मौके पर जबकि मुज़ाकरात हो रहे हैं, अमेरिका अपने दहशतगर्दों के ज़रिए फिर दबाव डालना चाहता है, और उन्होंने एक नया नाम दिया है दहशतगर्दों को, वो है मॉडरेट रेबल्स। मतलब मॉडरेट रेबल्स क्या होते हैं कि वो दहशतगर्द जो हल्की सी गोली धीरे से चलाए तो वो मॉडरेट होगा, और जो छुरी से गला काटे वो दूसरा दहशतगर्द होगा। ये इस्तलाहात क्रिएट करते हैं मुख्तलिफ दुनिया के जो देखने वाले अवाम हैं उनको कंफ्यूज करते हैं, लेकिन जो दुनिया है वो अब इस कंफ्यूजन का शिकार यकीनन होने को तैयार नहीं है। उन्हें मालूम है कि जालिम कौन है, मजलूम कौन है, और किस तरह से पूरी दुनिया, पूरे ग्लोब पर जो कब्जा है उसकी कोशिश की जा रही है। हालांकि ये जवाल पजीर है आलमी साम्राज्य इस वक्त, जैसा कि हमारे दोस्त ने पहले फरमाया, और ये ताकत हमेशा अवाम की ताकत होती है, और वो फैसला करते हैं कि उन्होंने अपने मुल्क में क्या करना है, या साम्राज्य का दबाव को बर्दाश्त करना है या नहीं करना। और शाम के अवाम इस, मैं उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने आज तक ना दहशतगर्दों का दबाव कबूल किया, ना इजिप्ट के तरफ से या ये सऊदी अरब और कतर और इस तरफ के जो दबाव थे उनको कबूल किया।
जी, बहुत शुक्रिया मुक्तदा मंसूर साहब, गुफ्तगू मुनक़ता हो गई थी। मैं यहाँ पर आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अभी जो मॉडरेट रेबल्स की जो इस्तेलाह अमेरिका की तरफ से आ रही है, और जिनके बारे में कहा जा रहा है कि हम उन्हें असलहे या हथियारों की सप्लाई दोबारा बहाल कर रहे हैं, मैं इस बारे में पूछना चाहूँगा कि जो लोग दूसरे मुल्कों से आकर गैर कानूनी तरीके से शाम में जंग कर रहे हों, उनका फलसफे वजूदी कैसे कानूनी बन सकता है? गैर कानूनी अफराद को कैसे कानूनमंद या कानूनी करार दिया जा सकता है, और उनको असलहे की सप्लाई कैसे जायज करार पा सकती है?
जनाब, सबसे पहली बात तो ये कि दहशतगर्द सिर्फ दहशतगर्द होता है, उसके अंदर ये दर्जाबंदी नहीं की जा सकती। ना ही ये कह सकते हैं कि वो चंगेज खान जैसा था है, ना ये कह सकते हैं कि वो हिटलर जैसा था, ये एक अलग चीज़ है। दहशतगर्द, पहली बात तो ये कि दहशतगर्द है। दूसरी बात यह है कि मैं जो बात तो कर रहा था वो बीच में खत्म हो गई थी, आज सऊदी अरब भी तनहा रह गया है और ये उनके लिए बड़ा अलमिया बन गया है, लिहाजा वो अब चाहते हैं कि इस इलाके में बतौर ताकत अब अपने फैसले जो है वो मुसल्लत कराने की कोशिश करें। लिहाजा जो दूसरे मुल्कों से आए हुए दहशतगर्द हैं और उनको जो है दोबारा से असलाह देकर और वो उस हुकूमत को ख़त्म करके अमूरी हुकूमत कायम करना चाहते हैं, जो मैं समझता हूँ कि किसी तौर पर भी शामी अवाम के लिए
डॉक्टर हफीजुर रहमान साहब, अभी सऊदी अरब की बात हो रही थी और जो दीगर ममालिक हैं जो दहशतगर्दों की शाम में हिमायत करें, आप देखें कि शामी वफद ने वाज लफ्ज़ों में ये खुल के कहा था कि अगर कोई ये सोचता है कि इंतकाल इकतदार का अमल जो है वो उन पर मुसल्लत किया जाएगा शाम के अवाम पर, तो ये ख्वाब देख रहे हैं ऐसे लोग, और अगर उनको ख्वाब देखने का शौक़ है तो ख्वाब देखते रहें। ये शामी हुकूमत के वफद ने जनेवा में वाशिगाफ लफ्ज़ों में यही जुमले अदा किए, तो क्या आप समझते हैं कि उनके इस मोहकम अज़्म इरादे के पेश नज़र ही ये अमेरिका जो है अब दोबारा हथकंडा इस्तेमाल कर रहा है मॉडरेट रेबल्स, उनके अपने लफ्ज़ों में उनको हथियारों की सप्लाई का, और क्या 3 साल का तजर्बा काफ़ी नहीं है कि अगर ताकत के ज़रिए बजोरे बाजू वहाँ पर शाम की हुकूमत की तब्दीली मुमकिन थी तो अब तक हो चुकी होती?
देखिए, बुनियादी चीज़ यह है कि शाम के डेलीगेशन ने सिर्फ वहीं जाके ये नहीं कहा, बल्कि कॉन्फ्रेंस में शिरकत से पहले ही शामी हुकूमत की जानिब से ये वाज़े कर दिया गया था कि हुकूमत मुंतकिलिए हुकूमत का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर डायलॉग इस पर होना है कि इंतकाले हुकूमत की बात की जाए, तो मैं ये समझता हूँ कि शाम अपने डेलीगेशन को उसमें भेजने के लिए राज़ी नहीं होता, बल्कि ये बात पहले तय कर दी गई थी। दूसरी बात, जब हम किसी भी जगह क़याम अमन की बात करते हैं, तो क़याम अमन का मकसद ये नहीं होता है कि किसी बरसरे इक्तदार हुकूमत को हटाकर आप रेबेल्स की उबूरी हुकूमत कायम कर दें, बल्कि जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं हमेशा उसमें कोशिश की जाती है कि पहले हालात पर काबू पाया जाए, अमन बरकरार हो, और उसके बाद वहाँ पर कोशिश आज़ादाना इलेक्शन की कराई जाती है। फिर जिस हुकूमत को भी वहाँ के आवाम मुंतखब करते हैं वो उस हुकूमत को हक है कि वो इस डेमोक्रेटिक निज़ाम में उस मुल्क को चला सके। दुनिया में हमेशा अमेरिका जो है, जिसने मुख्तलिफ ममालिक में जो वार इम्पोज की है बनाम डेमोक्रेसी, कभी वो अफगानिस्तान में करता है, कभी इराक में करता है, कभी किसी दूसरी कंट्री में करता है, कभी लीबिया में करता है। तो ये डेमोक्रेसी को इम्प्लीमेंट करने का कौन सा तरीका है कि वहाँ की बरसरे इक्तदार हुकूमत को आप जाने के बाद नेस्तो नाबूद कर देते हैं, वहाँ या तो अपने फाइटर भेज देते हैं या वहाँ के टेररिस्ट ग्रुप को सपोर्ट कर देते हैं। जिस तरह सऊदी अरब के बारे में बात आई, तो जो हाल आज पूरी दुनिया के अंदर जिल्लत का अमेरिका का हो रहा है, इतनी ही या उससे कई गुना ज़्यादा जिल्लत सऊदी अरब के उन बेहिस अरब हुक्मरानों की और शहजादों की हो रही है जो आज सऊदी अरब में एक सेल्फ इम्पोज डिक्टेटरशिप का कयाम किए हुए हैं, खुद मुख्तार हुकूमत का कयाम किए हुए हैं। और ये वही हुकूमत है जिसके लिए करबला के मैदान में इमाम हुसैन की यजीद के साथ जंग हुई थी, इसलिए कि इस्लाम डेमोक्रेसी की बात करता था, इस्लाम में शहनशाहियत की इजाज़त नहीं थी। लेकिन वेस्टर्न फोर्सेस की ताकत के ज़रिए ओटोमन एम्पायर के बाद जिस सऊदी अरब में अपनी शहनशाहियत के महलात तामीर किए, आज वो भी धीरे धीरे अवाम की नज़रों में गिरते चले जा रहे हैं। आज लोग अगर हिंदुस्तान, पाकिस्तान या दूसरे ममालिक से सऊदी अरब का सफ़र करते हैं तो या तो कुछ वो बेचारे बेरोजगार लोग सऊदी अरब में जाते हैं जिनको कहीं रोजगार नहीं मिलता, या फिर लोग वहां मक्का और मदीना की हाजिरी के लिए तो जाते हैं लेकिन इन शाहों के महलात देखने के लिए और इनकी शक्लें देखना वो पसंद नहीं करते, इसलिए कि अरब की सरजमीन पर जो कुछ इजाजतें इन्होंने अमेरिकन फौजियों को दे रखी हैं, जिस तरह से अलकायदा के साथ ये मीडिएटर होने का और रोल प्ले कर रहे हैं, जिस तरह से कहीं ना कहीं तालिबान के साथ वहाँ के लोगों के रिश्ते बने हुए हैं, तो जिस तरह आज अमेरिका दुनिया में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ एक दिन अकेला पड़ने वाला है, इसी तरीके से उसका ये ज़रख़रीद गुलाम सऊदी अरब के हुक्मरा भी अकेले पड़ जाएंगे और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस दुनिया में अमन पसंद लोगों की हुकूमत कायम होकर रहेगी, एक डेमोक्रेटिक निज़ाम पूरी दुनिया को चाहिए और पूरी दुनिया अमन के साथ रहना चाहती है। लेकिन ये कौन सा तरीका है कि आप लोगों को मेडिसिन सप्लाई कर नहीं करना चाहते, लोगों को एजुकेशन में आगे नहीं लगना चाहते, रोजगार में आगे नहीं लगना चाहते, जिनके मकान मुनहदिम हो गए हैं उनके मकान नहीं बनाना चाहते, लेकिन जो लोग वहाँ नेस्तो नाबूद कर रहे हैं, जो लोग वहाँ खून की होली खेल रहे हैं, जो लोग आग लगा रहे हैं वहाँ के शहरों में, उनको आप हथियार फराहम करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर गोली के जरिए बात की गई, अगर तोपों के जरिए बात की गई, अगर आर्म्स के जरिए बात की जाएगी तो कभी भी कयाम अमन नहीं हो सकता है। गुफ्तगू का तरीका मुसालेहाना होना चाहिए और अमन के कयाम के लिए होना चाहिए, ना कि अपनी डिक्टेटरशिप के कयाम के लिए या वहाँ पर आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए, टेररिज्म को बढ़ावा देने के लिए।
जी मुख्तदा मंसूर साहब, अगर मेरी आवाज़ आप सुन रहे हो तो अगला सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, बार बार रब्ता मुनक़ता हो जा रहा। जो अमरीकी दफ्तर खारजा की खातून तर्जमान पैसा की, उन्होंने अभी कल की बात है अपने बयान में कहा है कि शाम के ताल्लुक़ से फ़ौजी कार्रवाई का ऑप्शन अभी भी मेज़ पर मौजूद है। आप देखें कि अमेरिका तो चारों तरफ से घेर चुका था, उसके बहरी बेड़े भी पहुंच चुके थे और हज़ारों की तादाद में फ़ौजें भी पहुंच चुकी थी। उस वक्त अमेरिका सऊदी अरब और कतर और दीगर मुल्कों के साथ मिलकर कुछ न कर सका, तो अब सूरत हाल मैदानी जो सूरत हाल है शाम की तो काफ़ी तब्दील हो चुकी है और वहाँ की फ़ौजें मुसलसल पेशकदमी करती जा रही हैं और दहशत गर्दों को शिकस्त होती जा रही, तो ऐसे में अमरीका क्या अपने इस ऑप्शन के बारे में जो इसरार कर रहा है उसको अमली जामा पहनाने की पोजीशन में है?
देखिए जनाब, ये पहले भी अमेरिका ने धमकी दी थी और उसके उसमें जब उस रूस के वजीर आजम पुतिन साहब ने उसके ऊपर एक जवाबी हमला किया था तो उसके बाद उन्हें विदड्रॉ करना पड़ा था अमेरिका में। अब ये बात नहीं है, ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे एक मुहावरा है, उसके मुताबिक चल रहा है। और इस वक्त मैं जो बिल्कुल मुत्तफिक हूँ इस बात से कि सऊदी अरब भी तनाव हो रहा है और कतर वगैरह भी, और ये देखिए जो रिस्ट्रक्चर करने का उनका एक तसव्वुर था वो नाकामी से दो चार हो रहा है। लिहाजा इस वक्त सूरत हाल उस जगह पर पहुंच गई है कि जहां पर अब अमेरिका को विड्रॉ करना पड़ेगा और वो तमाम मामला जो कि उस खत्ते के अवाम के अपने मामला हैं उनको उन्हें खुद हल करने की इजाज़त देना पड़ेगी, बैरूनी दहशतगर्दों को वापस बुलाना पड़ेगा और उनको असलाह नहीं देना होगा और जेनेवा का अगला जो उसकी तारीख देना होगी मुज़ाकरात की, और उसके बाद ये बात तय करना होगी अमेरिका को कि अब उन ममालिक के अंदर और खासतौर पर शाम के अंदर आपको जो है मुदाखलत नहीं करनी है, ईरान को वो जिसको भी दावतनामा दिया था बान की मून ने और उसके बाद वो विड्रॉ किया गया, उसको दोबारा तो दावतनामा देना पड़ेगा क्योंकि ईरान का मामला बहुत करीबी है और ईरान उसके बगैर ईरान के बगैर ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए ज़रूरत इस अमर की है कि अब जो कॉन्फ्रेंस हो अमन के हवाले से उसके अंदर बाकायदा ठोस बुनियादों पर फैसले हों, ईरान को शामिल किया जाए और तमाम मामलात के अंदर ये बात तय की जाए कि वहाँ पर कोई बैरूनी मुदाखलत नहीं होगी, कोई मुसल्ला लड़ाई नहीं होगी और दहशतगर्दों को कोई असलाह सप्लाई नहीं होगी, कोई माली मुआवनत नहीं होगी और अवाम को हक दिया जाएगा कि वो आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात के जरिए अपनी हुकूमत खुद मुंतखब करें।
जी अली जाफर जैदी साहब, अभी हमारे दिल्ली मेहमान ने ये फरमाया, दिल्ली के मेहमान ने, कि अमेरिका और सऊदी अरब दोनों तन्हा पड़ते जा रहे हैं। आप क्या नहीं समझते कि रजब तैयब अर्दोगान साहब जो अभी दो रोज़ कब तेहरान का दौरा करके गए हैं और जिस तरीके से उन्होंने यहाँ दोस्ताना माहौल का एक तरह से मुजाहरा किया, आपकी इस्तेलाह में या इंग्लिश इस्तेलाह में जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी और जिस तरह से उन्होंने कहा कि ईरान मेरा दूसरा वतन है और जब दोनों मुल्कों के वज़रा बैठे तो ऐसा लग रहा था जैसे एक काबीना में हम लोग बैठे हुए हैं, तो इस तरह की जो उन्होंने बातें की और जिस तरह से अपने दौरे पर खुशी और मसरत का इजहार किया, तो क्या आप नहीं समझते कि हकायक कहीं ना कहीं शाम में तब्दील हो रहे हैं? चूँकि कहा यह जा रहा था कि शाम के मामले पर ईरान और तुर्की में कुछ दूरियाँ पैदा हो गई, कशीदगी पैदा हो गई और इसमें जाहिर है कि मुबसिन कहीं ना कहीं हक बजानी भी थे, तो अब जिस तरह से उन्होंने ईरान का दौरा किया और ख़ुशी का इजहार किया और खुश खुश लौटे, तो आप नहीं समझ रहे हैं कि शाम के अंदर और इलाकाई सतह पर हकायक में कहीं कुछ तब्दीली आ रही है?
जी यकीनन, ये ईरान के अंदर जो हुकूमत का कंट्रोल है उसके बढ़ने के बाद टर्की में ये तब्दीली आई, वरना टर्की की सरजमीन पर ही तरबियत दी जा रही थी, अभी भी तरबियत दी जा रही है। अमेरिका और ने जब असला यानी जून में ओबामा ने प्रॉमिस किया था कि लास्ट ईयर जून में यह असला जाएगा, जो कि सेनेट ने अप्रूव नहीं किया था, तो उस तमाम अरसे में अमेरिका के ये जो दो पैदा करदा यानी बहुत से पैदा करदा हैं मगर उनमें ये दो जो बगल बच्चे थे सऊदी अरब और कतर, ये असला भी सप्लाई करते रहे और टर्की के थ्रू ही ट्रेनिंग और वहाँ से ये सारी कार्रवाइयाँ होती रहीं। तो चूंकि अब सीरिया में हुकूमत का कंट्रोल बढ़ता जा रहा है, दहशतगर्द पसपाई का शिकार हैं, तो ये और सबसे ज़्यादा यानी ये सबसे ज़्यादा जिसने सफ़र किया है इस शाम की सूरत हाल की वजह से वो टर्की है। उसकी अपनी मईशत ख़राब होकर रह गई है, उसकी दुनिया में साख ख़राब होकर रह गई है और जितने महाजरीन वहाँ पर गए हैं उनका जो बोझ है वो उसकी मईशत पर बोझ है। तो टर्की ने सबसे ज़्यादा इसका नुकसान उठाया है एक गलत एक जालिम और गासिब का साथ देकर, और अब शायद उनको ये समझ आ रही है कि ये मामला उस तरफ नहीं जा रहा जैसा कि अमेरिका सऊदी अरब और कतर चाहते थे। अब शिफ्ट हुआ है ये मामला जॉर्डन की तरफ, ये जो असला इस वक्त जा रहा है ये जॉर्डन के बॉर्डर से जा रहा है और साउथ की तरफ ये मामला शिफ्ट हुआ है, जिस पे इसराइल ने भी गालबन कल ये बात इस बात खदशे का इजहार किया है कि ये जो 30,000 दहशतगर्द हैं जिसमें 50 ममालिक शामिल हैं, ये दहशतगर्द अगर सीरिया में ना घुस पाए तो फिर इनका हदफ इसराइल भी हो सकता है। हालांकि इसराइल ख़ुद इनकी इलाज मालजा करता है, इनके ज़ख्मी होने वाले लोगों की देखभाल करता है और उसी के ज़रिए ये साउथ से जो इस वक्त इन्फिल्ट्रेशन हो रही है शाम में, ये इसमें जॉर्डन और ये इसराइल के जो बॉर्डर्स हैं ये बहुत फाल हैं। लेकिन इसराइल शायद ये एक उसने एक ये इम्प्रेशन देना चाहा है कि अगर ये 30,000 जो दहशतगर्द हैं अगर इनकी तरफ से हमें ख़तरा हुआ तो फिर हम इस पर हमला कर सकते हैं, या उन्होंने रीथिंकिंग शुरू की है अपनी पॉलिसी पर और ये उनको मैं समझता हूँ याद रखने की ज़रूरत है हाफिज़ उल असद और बशर उल असद ने जो 1973 में जो एग्रीमेंट किया था गोलान पहाड़ियों के हवाले से, वो आज तक अपने माहदे पर कायम है। और ये जो दहशतगर्द हैं, ये तो खुदा से किए हुए वादे, इनका एक वादा पूरा है जो ये कर रहे हैं शैतान के हवाले से कि ज़मीन पर ये फिसाद बरपा करेंगे। अदरवाइज़ ये तो अपने पैदा करने वाले के साथ माहदा निभाने वाले लोग नहीं हैं। तो इसराइल को कम से कम, मैं समझता हूँ, ये बात सामने रखनी चाहिए कि शाम की हुकूमत ने 40 साल तक अपने माहदे की पासदारी की है,
जी
और ये जो दहशतगर्द हैं जो 50 मुल्कों से जमा हुए हैं, इनकी इमदाद करके इसराइल एक आग से खेलेगा, उसको अपने मुस्तकबिल का भी ख्याल करना चाहिए।
बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया अली जाफर जैदी साहब, आपने कीमती वक्त हमें इनायत किया। मुक्तदा मंसूर साहब, ये ऐलान हुआ है कि फरवरी में फिर मुज़ाकरात होंगे, अगरचे तारीख का ऐलान नहीं हुआ। कहा यह जा रहा है कि खुद शामी हुकूमत के वफ़द ने कहा है कि जो मुखालिफिन हैं उनको अमरीका, इसराइल और सऊदी अरब के अहलकार या उनके जो मुशाविरीन हैं वो डील कर रहे हैं, और वाज़ तौर पर 20 अफराद पर मुश्तमिल अमेरिका से एक वफद आया था सफारतकारों का, जो शामी मुखालिफिन की जो है वो रहनुमाई कर रहा था और उन्हें जो है गाइडलाइन दे रहा था। तो आप क्या समझते हैं कि अब जो फरवरी में मुज़ाकरात की बात की गई है, क्या उसे कोई तवक्को की जा सकती है या इस तरह के मुज़ाकरात फिर होंगे?
मुज़ाकरात तो होंगे, और असल में देखिए अमेरिका यहाँ पर फंस गया है और सऊदी अरब भी फंस गया है। मैंने जैसा कि आपसे पहले अर्ज किया था कि सऊदी अरब अब तन्हाई की तरह बढ़ रहा है और मुस्लिम ममालिक में भी उसकी तमाम साजिशें जो है वो खुलकर सामने आ रही हैं। ये जो शाम का मामला है, ये सऊदी अरब के हलक के अंदर एक कांटे की तरह अटक चुका है। लिहाजा अब वो लाजमी तौर पर ये चाहेंगे कि अगली जो मीटिंग हो उसमें फरवरी के अंदर, उसकी तारीख उन्होंने इसीलिए अभी अनाउंस नहीं की है कि वो बाद में करेंगे, इसके अंदर पेशरफ्त अगर नहीं होती है तो मैं नहीं समझता कि वो कोई कुछ गलत कर पाएंगे। इसलिए कि काफ़ी हद तक बशर अल असद की हुकूमत ने कंट्रोल पा लिया है उन तमाम बागियों के ऊपर, और काफ़ी हद तक शहरों के अंदर कंट्रोल हो गया है, और खुद वहाँ के अवाम के अंदर जो तजब्जब पाया जाता था शुरू के दिनों में, शुरू के सालों में, वो भी ख़त्म हो गया, और वो समझ गए हैं कि ये दहशतगर्द, इनका मकसद सिर्फ जो है इस्तेमालियत को और आलमी साम्राज्य को जो है वो इस खत्ते के अंदर उसके ख़त्म जमाने के लिए कोशिश है। लिहाजा ये तमाम लोग बरहना हो रहे हैं, इनके तमाम किरदार बरहना हो रहे हैं, और ये तमाम लोग जो हैं, ये तमाम ममालिक जो हैं, वो वाज़ेह होकर सामने आ रहे हैं। इसलिए मुझे तवक्को है कि इस मुज़ाकरात में लाजमी तौर पर जो फरवरी में होंगे कुछ ना कुछ पेशरफ्त ज़रूर हो सकती है।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब हाफिज़ुर रहमान साहब। 1-1.5 मिनट में आप बताएंगे कि जो अमरीकी दफ्तर खारजा के तर्जमानों ने एतराफ़ किया है कि अमरीका का रोल, माफ़ कीजिएगा, ईरान का रोल इस सिलसिले में यानी शाम के बहरान में इंतहाई तामीरी है, और अगले मुज़ाकरात में ईरान को दावत दी जा सकती है, तो किस नतीजे पर पहुंचा अमेरिका? मुख्तसर जवाब चाहूंगा।
नहीं, इस सिलसिले में जिस तरह के बयानात ईरान की जानिब से आए और जिस तरीके की पेशरफ्त हुई या जो कोऑपरेशन करने की ईरान ने बात की थी, वो यकीनन तामीरी है। और जब भी आप किसी सिलसिले में कोई फैसला करते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसके नेबर्स को छोड़ के फैसला नहीं किया जा सकता। अगर कभी भी हिंदुस्तान पाकिस्तान के हवाले से जिस तरह कोई बात होती है तो जाहिर सी बात है कि पड़ोसी ममालिक के होने की हैसियत से पाकिस्तान की राय हिंदुस्तान के बारे में और हिंदुस्तान की राय पाकिस्तान के बारे में ली जाती है। तो शाम के बारे में कोई फैसला, मैं ये समझता हूँ कि ईरान के बगैर नहीं हो सकता, और अमेरिका को देर से अकल आई है। तो ये बहुत अच्छा है कि वो अपनी जो उन्होंने सोचा है उस पर कायम रहें। इसी तरह जिस तरह तैयब अर्दोगान साहब आए तो उनका भी वेलकम किया जाना चाहिए, इसलिए कि मुझे तारीखी हवाले से एक बात याद आती है कि ये जो गय्यूर तुर्क हैं, अगर ये अपनी तारीख से मोहब्बत रखते हैं और तारीख को पहचानते हैं तो कभी भी सऊदी अरब के ये जो हुक्मरान हैं वो इनके दोस्त नहीं हो सकते, क्योंकि इन्हीं ने इनके आबो अजदाद को नेस्तो नाबूद किया था। और सऊदी अरब के जो आका हैं, वो भी उनके दोस्त नहीं हो सकते। तो ये भी ज़रूरत है कि जो ममालिक हैं वो अपने पड़ोसी ममालिक के इत्तेहाद का, ताकत का, सलामती का ख्याल रखें, और होना तो ये चाहिए कि आलमी एतबार से तमाम मुस्लिम ममालिक के अंदर एक इत्तेहादी सूरत हाल पैदा होना चाहिए।
जी, बहुत शुक्रिया आपका जनाब हफीजुर रहमान साहब। नाज़रीन, आपने हमारे मौजूद मेहमानों की गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई। बहरहाल, जब तक हकायक को तस्लीम नहीं किया जाएगा कोई भी मसला हल नहीं होगा। और आज जैसा कि तेहरान के खतीब जुमा ने और दीगर ईरानी हुकाम ने कहा कि सादा सा हल ये है कि दहशत गर्दों को सप्लाई हथियारों की और उनकी माली इमदाद बंद की जाए, शाम का मसला खुद ब खुद हल हो जाएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए।